नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एंटी ओडिपस कैपिटलिज्म एंड स्किजोफ्रेनिया। फ्रांसीसी दार्शनिक जिल देल्यूज और मनोविश्लेषक फेलिक्स ग्वातारी की संयुक्त कृति है। पहली बार 1972 में प्रकाशित यह पुस्तक उनकी दो खंडीय परियोजना कैपिटलिज्म एंड स्किजोफ्रेनिया का पहला भाग है। यह पारंपरिक फ्राइडिया और लाकानियन मनोविश्लेषण, विशेषकर ओडिपस कॉम्प्लेक्स की केंद्रीयता पर तीखा दार्शनिक और राजनीतिक प्रश्न उठाती है। लेखक इच्छा को किसी अनुपस्थित वस्तु की कमी नहीं, बल्कि संबंधों, संस्थाओं, श्रम, भाषा और सामाजिक जीवन को लगातार रचने वाली उत्पादक शक्ति मानते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल चिकित्सा पद्धति की आलोचना करना नहीं है, वह यह भी दिखाती है कि परिवार, राज्य, बाजार और सांस्कृतिक संस्थाएं इच्छा को किस प्रकार विशेष रूपों में संगठित, सीमित और मोड़ती हैं। इसका शीर्षक मानसिक स्वास्थ्य का नैदानिक वर्णन नहीं, बल्कि पूंजीवादी समाज की विखंडित करने और फिर नियंत्रण स्थापित करने वाली प्रवृत्तियों का सैद्धांतिक रूपक है। कठिन, प्रयोगधर्मी और विवादास्पद भाषा के बावजूद यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध के आलोचनात्मक सिद्धांत की अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ओडिपस कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध इच्छा को पारिवारिक नाटक से बाहर निकालना। एंटी ओडिपस का पहला प्रमुख हस्तक्षेप उस धारणा के विरुद्ध है कि अचेतन की मूल संरचना परिवार के भीतर पिता, माता और संतान के त्रिकोण से समझी जा सकती है। देल्यूज और ग्वातारी के अनुसार मनोविश्लेषण अक्सर व्यापक सामाजिक अनुभवों को पारिवारिक भाषा में अनुवाद कर देता है। काम, धन, कानून, वर्ग, नस्ल, संस्थान और राजनीतिक सत्ता से जुड़े तनाव भी व्यक्ति की निजी पारिवारिक इच्छा के रूप में पढ़े जाने लगते हैं। लेखकों की आपत्ति यह नहीं कि परिवार का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। उनका तर्क यह है कि परिवार स्वयं सामाजिक व्यवस्था से अलग इकाई नहीं है। वह आर्थिक दबावों, राज्य के नियमों, लैंगिक मानदंडों और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से निर्मित होता है। इसलिए हर इच्छा को ओडिपस कॉम्प्लेक्स में वापस ले जाना इच्छा की सामाजिक और ऐतिहासिक जटिलता को संकुचित कर देता है। पुस्तक मनोविश्लेषण की उस उपचारात्मक प्रक्रिया पर भी प्रश्न करती है जिसमें व्यक्ति को पूर्व निर्धारित पारिवारिक अर्थ स्वीकार करने की ओर धकेला जा सकता है। इस आलोचना का व्यापक अर्थ है कि किसी व्यक्ति की बेचैनी या आकांक्षा को केवल निजी मनोविज्ञान से नहीं समझना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि सामाजिक संस्थाएं किन इच्छाओं को वैध, उपयोगी, शर्मनाक या असंभव घोषित करती हैं। इस प्रकार एंटी ओडिपस मानसिक जीवन और सामाजिक सत्ता के बीच के संबंध को केंद्र में रखती है। दूसरा, इच्छा की कमी नहीं। डिसायरिंग प्रोडक्शन की उत्पादक व्यवस्था देल्यूज और ग्वातारी का सबसे प्रसिद्ध प्रस्ताव है कि इच्छा मूलतः कमी की अनुभूति नहीं है। प्रचलित विचार में हम किसी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। एंटी ओडिपस इसके बजाय इच्छा को उत्पादन कहती है। इच्छा संबंध बनाती है, प्रवाहों को जोड़ती है, आदतें रचती है, वस्तुओं में निवेश करती है और सामाजिक व्यवस्थाओं में भाग लेती है। इसी अर्थ में लेखक डिसायरिंग मशीन्स की भाषा अपनाते हैं। यहां मशीन किसी धातु के उपकरण का नाम नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कार्यशील संयोजनों का रूपक है जिनसे शरीर, भाषा, श्रम, तकनीक, स्मृति और अन्य लोगों के बीच संपर्क बनते हैं। कोई भी संयोजन स्थायी पूर्णता नहीं है, वह टूट सकता है, नए संबंध बना सकता है या किसी संस्था द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह विचार व्यक्ति को एक बंद, स्वायत्त और एक रूप इकाई मानने से रोकता है। वह अनेक संबंधों और प्रक्रियाओं से बना हुआ है। इच्छा को उत्पादक मानने का राजनीतिक परिणाम भी है। लोग केवल अपने हितों के विरुद्ध धोखे से व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, वे कभी कभी सत्ता के रूपों में भावनात्मक और सामाजिक निवेश भी करते हैं। इसलिए मुक्ति की राजनीति केवल सही जानकारी देने का प्रश्न नहीं रहती। उसे यह समझना पड़ता है कि इच्छा किन संबंधों में बनती है, किन रूपों में आनंद या सुरक्षा खोजती है और किन परिस्थितियों में नए सामाजिक संबंध बना सकती है। तीसरा, पूंजीवाद का डिकोडिंग और रिटेरिटोरियलाइजेशन का दोहरा संचालन। पुस्तक पूंजीवाद को केवल बाजार व्यवस्था या निजी संपत्ति की प्रणाली के रूप में नहीं देखती। देल्यूज और ग्वातारी के लिए पूंजीवाद विभिन्न प्रवाहों, जैसे श्रम, धन, वस्तुओं, जनसंख्या और इच्छा को पुराने सांस्कृतिक बंधनों से अलग करने की असाधारण क्षमता रखता है। वे इस प्रक्रिया को डिकोडिंग और डिटेरिटोरियलाइजेशन जैसे शब्दों से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजीवादी उत्पादन व्यक्ति को स्थानीय परंपराओं, स्थिर पेशों या सामुदायिक संबंधों से हटाकर मजदूरी, विनिमय और प्रतिस्पर्धा के व्यापक नेटवर्क में डाल सकता है। लेकिन व्यवस्था इन प्रवाहों को पूरी तरह मुक्त नहीं छोड़ती। वह परिवार, राष्ट्र, कानून, उपभोग, नौकरशाही और पहचान के नए ढांचों के माध्यम से उन्हें फिर बांधती है। इस पुनर्बांधने को रिटेरिटोरियलाइजेशन कहा जाता है। यही दोहरी गति पुस्तक की केंद्रीय राजनीतिक अंतर्दृष्टि है। पूंजीवाद निरंतर परिवर्तन, नवाचार और सीमाओं के टूटने को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही सामाजिक अनुशासन और आर्थिक नियंत्रण के नए साधन भी बनाता है। इसलिए लेखक पूंजीवाद को स्वभावतः मुक्तिदायी नहीं मानते। उसकी गतिशीलता, अस्थिरता, अलगाव और असमानता भी पैदा कर सकती है। इस विश्लेषण से पाठक को यह समझने का उपकरण मिलता है कि आधुनिक संस्थाएं स्वतंत्रता की भाषा का उपयोग करते हुए भी व्यवहार, श्रम और आकांक्षाओं को कैसे विन्यस्त करती हैं। पुस्तक का लक्ष्य किसी सरल समाधान का दावा नहीं, बल्कि इस विरोधाभासी संचालन को दृश्यमान बनाना है। चौथा, एक सी जो एनालिसिस और बॉडी विदाउट ऑर्गन्स के माध्यम से वैकल्पिक विश्लेषण। ओडीपसीकरण की आलोचना के बाद डेल्यूज और ग्वात्तारी स्किजो एनालिसिस का प्रस्ताव रखते हैं। यह कोई मानक चिकित्सकीय पद्धति या मानसिक रोग का उपचार मैनुअल नहीं है। इसका उद्देश्य उन स्थापित व्याख्याओं को चुनौती देना है जो हर इच्छा को पारिवारिक कमी, स्थिर पहचान या एकीकृत अहम में बदल देती हैं। स्किजो एनालिसिस पूछता है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था में इच्छा किन वास्तविक संबंधों से गुजरती है, कहां उसे रोका जाता है और किन संयोजनों में वह नए रूप लेती है। इस संदर्भ में बॉडी विदाउट ऑर्गन्स की जटिल अवधारणा आती है। इसका अर्थ वास्तविक शरीर से अंग हटाना नहीं है। यह उस स्तर का नाम है जहां शरीर और अनुभव को पहले से तय कार्यों, भूमिकाओं और संगठन में पूरी तरह स्थिर नहीं किया गया है। यह अवधारणा संकेत देती है कि व्यक्ति को केवल उत्पादक कर्मचारी, आज्ञाकारी, नागरिक, पारिवारिक भूमिका या निश्चित पहचान मानना अपर्याप्त है। फिर भी पुस्तक असीम विघटन का सरल उत्सव नहीं करती। इच्छा के प्रवाहों के साथ विनाशकारी, जड़ या आत्महानिकारक लगाव भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी कठिनाई यह है कि वह मुक्ति को नियमों के पूर्ण अभाव के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे संबंधों की रचना के रूप में सोचती है जो जीवन की क्षमता घटाने के बजाय बढ़ाए। यह ढांचा विश्लेषण को निदानात्मक लेबलों से हटाकर सत्ता, संबंध और सृजन की ठोस प्रक्रियाओं की ओर मोड़ता है। अंत में सूक्ष्म राजनीति में यह प्रश्न कि लोग दमनकारी व्यवस्थाओं को क्यों चाहते हैं, एंटी ओडिपस का सबसे असुविधाजनक प्रश्न है कि लोग कभी कभी उन व्यवस्थाओं में भी निवेश क्यों करते हैं जो उन्हें सीमित, नियंत्रित या शोषित करती है। लेखक इस प्रश्न का उत्तर केवल झूठी चेतना से नहीं देते। उनके अनुसार इच्छा सामाजिक उत्पादन से अलग नहीं है, इसलिए सत्ता केवल बाहर से आदेश नहीं देती। वह परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल, मीडिया, नैतिकता और दैनिक आदतों के जरिए लोगों की आकांक्षाओं और भय में जगह बना सकती है। यही वह स्तर है जिसे बाद में अक्सर सूक्ष्म राजनीति के रूप में समझा गया। बड़े राजनीतिक नारों के साथ साथ छोटे व्यवहार, समूह निष्ठाएं, अधिकार के प्रति आकर्षण और भिन्नता के प्रति घृणा भी राजनीतिक महत्व रखते हैं। पुस्तक की प्रसिद्ध गैर फासीवादी दिशा इसी चिंता से जुड़ती है। इसका आशय किसी एक दल या ऐतिहासिक शासन तक सीमित नहीं है। चेतावनी यह है कि नियंत्रण की इच्छा, कठोर पहचान की चाह और दूसरों को अनुशासित करने का आग्रह हमारे अपने व्यवहारों में भी उपस्थित हो सकता है। यह विश्लेषण राजनीतिक संघर्ष को अधिक कठिन बनाता है, क्योंकि केवल बाहरी शत्रु की पहचान पर्याप्त नहीं रहती। समूहों को अपनी भाषा, संगठन और नेतृत्व में बन रहे दमनकारी ढांचों पर भी नजर रखनी होती है। यद्यपि पुस्तक समकालीन राजनीतिक समस्याओं के लिए तैयार नीतियां नहीं देती, वह सत्ता को केवल राज्य की संस्था मानने की सीमा तोड़ती है। इसीलिए सांस्कृतिक अध्ययन, नारीवादी सिद्धांत और सामाजिक आंदोलन संबंधी विमर्शों में इसकी अवधारणाएं लंबे समय तक उपयोगी रही हैं। निष्कर्ष में, एंटी ओडिपस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दर्शन, मनोविश्लेषण, राजनीतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक अध्ययन या पूंजीवाद की आलोचना में गंभीर रुचि रखते हैं। इसे त्वरित आत्म सहायता, सरल अर्थशास्त्र या मनोचिकित्सा की व्यावहारिक मार्गदर्शिका समझकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी भाषा जानबूझकर घनी है और लेखक मनोविश्लेषण, मार्क्सवाद, मानव विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन के बीच लगातार आवागमन करते हैं। इसलिए धीमा पठन, सहायक परिचयात्मक सामग्री और अवधारणाओं पर लौटकर विचार करना उपयोगी रहता है। बदले में पुस्तक एक असाधारण बौद्धिक लाभ देती है। यह व्यक्ति की इच्छाओं को निजी और सामाजिक दोनों स्तरों पर पढ़ना सिखाती है। साथ ही ये बताती है कि स्वतंत्रता, उपभोग, परिवार, पहचान और राजनीतिक निष्ठा के बीच संबंध अक्सर सीधे नहीं होते। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता यह है कि यह फ्रायड और मार्क्स के बीच कोई साधारण समझौता नहीं कराती। वह दोनों परंपराओं से प्रश्न लेकर इच्छा और सामाजिक उत्पादन का नया शब्दकोश बनाती है। डिसायरिंग प्रोडक्शन, डिकोडिंग, रिटेरिटोरियलाइजेशन और स्किजो एनालिसिस जैसे विचार पाठक को तैयार निष्कर्ष नहीं देते, बल्कि विश्लेषण की नई समस्याएं देते हैं। यही इसकी शक्ति और चुनौती दोनों है। इसके कुछ दावे विवादास्पद हैं और मानसिक बीमारी संबंधी इसके रूपकों को नैदानिक विज्ञान के विकल्प की तरह नहीं लेना चाहिए। फिर भी सत्ता और इच्छा के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए यह आलोचनात्मक सिद्धांत की सबसे मौलिक और प्रभावशाली कृतियों में बनी हुई है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिल डेलोज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।